एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा आगम अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सन्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पन दा खजाना है, लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान कीता, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान कीता है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है, तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अमान है, तेनू कोई मान नहीं है, किसी भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा, अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ, ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਔਰ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੋ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चिंतन दे बदलदे आ मनुख दा सब कुछ बदल जांदा है, सारे दा सारा व्यवहार बदल जांदा है विचार दे बदलदे आ। और किधरे बहु गिणती दे च मनुखां दे विचार बदल जान, इसे नूं कहिंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहु गिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जांदा है, युग बदल जांदा है। और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिदा। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वह आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवे तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगो तू झुक रहे है ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख दी तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इसनू दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है कि कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या कीती जा सकदी है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चढ़ी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थल्ले मिंज है, मिंज दे थल्ले मांस है, मांस दे थल्ले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और है कि भगत कबीर कहिंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस उपरले राख्यो गुमान। है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना तन दा अहंकार की है, खलड़ी दा अहंकार। जैसे असि वख वख रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग की खलड़ी किसी नूं नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। करम ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार किते हुए करमां दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानूं मिलदा है। पर इस चोले का रंग, इस कपड़े का रंग भी रब ने वख वख दे दिता, किसी नूं गोरा, किसी नूं काला, किसी नूं सांवरा, किसी नूं लाल, किसी नूं जर्दी मायल, किसी नूं गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तू वेखी जगत उपाया, परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेशतर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है। रंग सबे नारायण है, जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दे चढ़िया होया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां का मजमू है। जैसे तन चारां का जोड़ है, हड्डियां, मांस, मिंज, खलड़ी, इस तरह मन भी चारां का मजमू है। विचार, सोचनी, चितवनी, आहंग, इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित आहंग। मन बुद्ध चित आहंग, इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जब सोचता है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध ते जद मनुख किसे नु याद करता है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वही मन बन गया चित। मन बुद्ध चित। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन का माण करता है, धन का माण करता है, जोबन का माण करता है, प्रभुता का माण करता है, परिवार से माण करता है, जात से माण करता है, कुल से माण करता है। लेकिन जब हंकार बदल जाता है तो यह रब से माण करता है, बाकी किसी से माण नहीं करता, गुरु से माण करता है। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा माण है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते माण। तन ते माण है, धन ते माण है, जोबन ते माण है, प्रभता ते माण है, परिवार ते माण है, कुल ते माण है, जात ते माण है, इते महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा माण करदा है, कोई प्रभता दा माण करदा है, कोई धन दा माण करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा। धन दा माण, जोबन दा माण, प्रभता दा माण। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, माण तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा उन्हां कोल, किस ते? उस परमात्मा ते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो, ताण मांगो, धन लखमी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, उह ते मरण तो पहले मर गया, उह ते कबर ते चला गया, उह ते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਤਾਣੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇ, ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਭਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਧਕ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਧੂ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਤਨ ਮੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਜਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਤਨ ਮੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠਗਾ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਠਗਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਗਾ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਖਾਣ ਦਾ ਚਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਦਾ ਵੇਖ ਸੁਰਸਤੀ ਰੂਪ ਲੁਭਾਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਸ਼ੰਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਇੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਨਾਰਦ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नु शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जांदे ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसे होर ने नहीं ठगया, मन ने ठग लिया बिशनु नो, मन ने ठग लिया शिव जी नो, मन ने ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल करदे ने, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहिन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने इह जो तिन ने काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा दे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते ने। कहते ने ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जाए, असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे वजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नू पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझणा है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है, यह भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतरमुखी होए बिना कोई समझ भी नहीं आएगी, तो अंतरमुखी ओही हो सकेगा जो सुनदा है। तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने साधना दा थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल एको ही है, ठिकाना एको है। साढ़े हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसे देवते अवतार दी मूर्ति दे, सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है, दर्शन करने ने।